विदेशी यात्रियों के विवरण। भारतीय साहित्य के अतिरिक्त समय समय पर भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण से भी हमें इतिहास जानने में पर्याप्त मदद मिलती है। इनमें से कुछ ने तो भारत में कुछ समय तक निवास किया और अपने स्वयं के अनुभव से लिखा है, तथा कुछ यात्रियों ने जनश्रुतियों एवं भारतीय ग्रंथों को अपने विवरण का आधार बनाया है। इन लेखकों में यूनानी, चीनी तथा अरबी फारसी लेखक विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनका वर्णन हम आगे बता रहे हैं। यूनानी रोमन क्लासिकल लेखक, जो यूनान के प्राचीनतम लेखकों में टेसियस तथा हेरोडोटस हैं, ये बहुत ही प्रसिद्ध नाम हैं। टेसियस ईरान का राज्यवैद्य था तथा उसने ईरानी अधिकारियों द्वारा ही भारत के विषय में जानकारी प्राप्त की थी, परंतु उसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय हो गया है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। उसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है। उसका विवरण अधिकांशतः जनश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निर्याकस, आनेसिक्रिटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अपेक्षाकृत अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं, क्योंकि इन लेखकों का उद्देश्य अपनी रचनाओं द्वारा अपने देशवासियों को भारतीयों के विषय में बताना था, अतः इनका वृत्तांत यथार्थ है। सिकंदर के पश्चात के लेखकों में 3 राजदूतों मेगस्थनीज, डाइमेकस तथा डायोनिसियस के नाम उल्लेखनीय हैं, जो यूनानी शासकों द्वारा पाटलिपुत्र के मौर्य दरबार में भेजे गए थे। इनमें भी मेगस्थनिक सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था तथा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने इंडिका नामक पुस्तक में मौर्ययुगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। यद्यपि यह पुस्तक अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, तथापि इसके कुछ अंश उद्धरण के रूप में एरियन, स्ट्रेबो, जस्टिन आदि लेखकों की कृतियों में प्राप्त होते हैं। इंडिका वस्तुतः यूनानियों द्वारा भारत के संबंध में प्राप्त ज्ञान राशि में सबसे अमूल्य रत्न है। डाइमेकस सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था बिंदुसार के दरबार में, तथा डायोनिसियस मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था अशोक के दरबार में आया था। अन्य ग्रंथों में पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, टालमी का भूगोल, प्लिनी का नेचुरल हिस्ट्री आदि का भी उल्लेख किया जा सकता है। पेरिप्लस का लेखक 80 ईस्वी के लगभग हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। उसने बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं का विवरण दिया है। प्राचीन भारत के समुद्री व्यापार के ज्ञान के लिए उसका विवरण बड़ा उपयोगी है। 2री शताब्दी में टालमी ने भारत का भूगोल लिखा था। प्लिनी का ग्रंथ 1 शताब्दी ईस्वी का है। इससे भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। जो चीनी लेखक हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में चीनी यात्रियों के विवरण भी विशेष उपयोगी रहे हैं। ये चीनी यात्री बौद्ध मतानुयायी थे तथा भारत में बौद्ध तीर्थस्थानों की यात्रा तथा बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए आए थे। वे भारत का उल्लेख यिंतु नाम से करते हैं। इनमें 4 के नाम विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं, फाहियान, सुंगयुन, हुएनसांग तथा इत्सिंग। फाहियान गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक राज्य करे थे के दरबार में आया था। उसने अपने विवरण में मध्य देश के समाज एवं संस्कृति का वर्णन किया है। वह मध्य देश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताता है। जो सुंगयुन था, यह 518 ईस्वी में भारत आया था और उसने अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध ग्रंथों की प्रतियां एकत्रित की। चीनी यात्रियों में सर्वाधिक महत्व ह्वेनसांग अथवा युआन च्वांग का ही है, जो महाराज हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 ईस्वी में लगभग यहाँ आया था। उसने 16 वर्षों तक यहाँ निवास कर विभिन्न स्थानों की यात्रा की तथा नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्षों तक रहकर शिक्षा प्राप्त की। उसका भ्रमण वृत्तांत सियुकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इससे हर्षकालीन भारत के समाज, धर्म तथा राजनीति पर सुंदर प्रकाश पड़ता है। उसके मित्र विली ने ह्वेनसांग की जीवनी लाइफ ऑफ ह्वेनसांग लिखी है, जो हर्षकालीन भारत की दशा के ज्ञान के लिए एक प्रमुख स्रोत है। भारतीय संस्कृति के इतिहास में ह्वेनसांग ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इत्सुंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। उसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत की दशा का वर्णन किया है, परंतु वेनसांग के समय समान वह उपयोगी नहीं है। अन्य चीनी लेखकों में मात्वान लेन तथा चाऊ जू कुआ का उल्लेख किया जा सकता है। मात्वान लेन के विवरण से हर्ष के पूर्वी अभियान के विषय में कुछ सूचना मिलती है। चाऊ जू कुआ चोल इतिहास के विषय में कुछ तथ्य प्रस्तुत करता है। जो अरबी लेखक थे यह अरब व्यापारियों तथा लेखकों के विवरण हैं। इससे हमें पूर्व मध्यकालीन भारत के समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी होती है। ऐसे लेखकों में अलबरूनी का नाम सर्वप्रसिद्ध है। उसका जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज्म खीवा में हुआ था। उसका पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अलबरूनी था। प्रारंभ में उसने साहित्य तथा विज्ञान का अध्ययन किया एवं इन विद्याओं में निपुणता हासिल की। उसकी विद्वता से प्रभावित होकर ख्वारिज्म के ममूनी शासक ने उसे अपना मंत्री नियुक्त कर दिया। 1017 ईस्वी में गजनी के सुल्तान महमूद ने ख्वारिज्म पर आक्रमण किया तथा उसे जीत लिया। अनेकों लोग बंदी बनाए गए जिनमें अलबरूनी भी एक था। महमूद उसकी योग्यता से अत्यंत प्रभावित हुआ तथा उसने उसे राज ज्योतिषी के पद पर नियुक्त कर दिया। भारतीय तथा यूनानी दोनों ही पद्धतियों से उसने ज्योतिष का अध्ययन किया तथा निपुणता प्राप्त की। गणित विज्ञान एवं ज्योतिष के साथ ही साथ अलबरूनी अरबी फारसी एवं संस्कृत भाषाओं का भी अच्छा ज्ञाता था। वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, किंतु उसका दृष्टिकोण महमूद से पूर्णतया भिन्न था। अब वह भारतीयों का निंदक न होकर उनकी बौद्धिक सफलताओं का महान प्रशंसक था। भारतीय संस्कृति के अध्ययन में उसकी गहरी दिलचस्पी थी तथा गीता से वह विशेष रूप से प्रभावित हुआ। भारतीयों के दर्शन ज्योतिष एवं विज्ञान संबंधी ज्ञान की वह प्रशंसा करता है। अलबरूनी सत्य का हिमायती तथा अपने विचारों का पक्का था। उसने भारतीयों से जो कुछ सुना उसी के आधार पर उसकी सभ्यता का विवरण प्रस्तुत कर दिया। अपनी पुस्तक तहकीके हिंद जो भारत की खोज है उसमें उसने यहाँ के निवासियों की दशा का वर्णन किया है। इससे राजपूतकालीन समाज धर्म रीति रिवाज राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश पड़ता है तथा ज्ञात होता है कि उसके समय में ब्राह्मण धर्म का बोलबाला था तथा बौद्ध धर्म का अस्तित्व समाप्त हो गया था। अपने विवरण में वह बौद्ध धर्म का बहुत कम उल्लेख करता है। हिंदू समाज में प्रचलित वर्ण व्यवस्था का भी उल्लेख वह करता है तथा बताता है कि ब्राह्मणों को समाज में सबसे अधिक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त था। पेशावर स्थित कनिष्क विहार का भी वह विवरण देता है। अलबरूनी का विवरण चीनी यात्रियों के विवरण की भांति उपयोगी नहीं है, क्योंकि उसे भारत में भ्रमण करने का बहुत कम अवसर प्राप्त हुआ। उसके समय में बनारस तथा कश्मीर शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे, किंतु वह इन स्थानों में भी नहीं जा सका। अलबरूनी के अतिरिक्त अल बिलादुरी, सुलेमान, अल मसऊदी, हसन निजाम, फरिश्ता, निजामुद्दीन आदि मुसलमान लेखक भी हैं जिनकी कृतियों से भारतीय इतिहास विषय से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इब्न खुर्दब 9वीं शती के ग्रंथ किल्बुल मसालिक वल ममालिक में भारतीय समाज तथा व्यापारिक मार्गों का विवरण दिया गया है। अबू जैद ने भारत में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का वर्णन दिया है। अल मसूदी के ग्रंथ मुरजुज जहब में भारतीय समाज का चित्रण है। मीर मोहम्मद मसूद के तारीख सिंध अथवा तारीख मसूमी में सिंध देश का इतिहास अरब आक्रमण के समय का जो है ज्ञात होता है। यह अरब आक्रमण के कारणों तथा मोहम्मद बिन कासिम की सफलताओं पर भी प्रकाश डालता है। शेख अब्दुल हसन कृत कमिल उत तवारिक से मोहम्मद गोरी के भारतीय विजय का वृत्तांत ज्ञात होता है। मिन हासुद्दीन के तबकात ए नासिरी में भी मोहम्मद गोरी की हिंदुस्तान विजय का प्रामाणिक विवरण सुरक्षित है। उपर्युक्त लेखकों के अतिरिक्त तिब्बती बौद्ध लेखक तारानाथ 12वीं शताब्दी के हैं। उनका जो ग्रंथ है कंग्यूर तथा तंग्यूर से भी भारतीय इतिहास की कुछ बातें ज्ञात होती हैं, किंतु उसके विवरण ऐतिहासिक नहीं लगते। वेनिस का प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो 13वीं शती के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। उसका वृत्तांत पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। जो अगला साक्ष्य है पुरातात्विक साक्ष्य है। यह पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। प्राचीन इतिहास के ज्ञान के लिए पुरातात्विक प्रमाणों से बहुत अधिक सहायता मिलती है। ये साधन अत्यंत प्रामाणिक हैं तथा इनसे भारतीय इतिहास के अनेक अंध युगों पर प्रकाश पड़ता है। जहाँ साहित्यिक साक्ष्य मौन हैं, वहाँ हमारी सहायता पुरातात्विक साक्ष्य करते हैं। पुरातत्व के अंतर्गत मुख्यतः तीन प्रकार के साक्ष्य आते हैं, जैसे अभिलेख, मुद्रा तथा स्मारक। इनका जो विस्तृत विवरण है हम आगे बताएंगे। जो अभिलेख थे, ये प्राचीन इतिहास के पुनर्निर्माण में अभिलेखों से बड़ी मदद मिली है। अभिलेखों का ऐतिहासिक महत्व साहित्यिक साक्ष्यों से अधिक है। ये अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं एवं प्रतिमाओं आदि पर खुदे हुए मिले हैं। सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया के बोगाजकोई से प्राप्त अभिलेख हैं। यह हित्ती नरेश सप्पिलुलियमा तथा मितानी नरेश मतवजा के बीच संधि का उल्लेख है, जिसके साक्षी के रूप में वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नसात्य के नाम मिलते हैं। यह लगभग 1400 ईसा पूर्व के हैं तथा इनमें ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में सहायता मिलती है। पारसिक नरेशों के अभिलेख हमें पश्चिमोत्तर भारत में ईरानी साम्राज्य के विस्तार की सूचना देते हैं, परंतु अपने यथार्थ रूप में अभिलेख हमें अशोक के शासन काल से ही मिलने लगते हैं। अशोक के अनेक शिलालेख एवं स्तंभ लेख देश के विभिन्न स्थानों से प्राप्त होते हैं। अभिलेखों से अशोक के साम्राज्य की सीमा, उसके धर्म तथा शासन नीति पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर जैसे एक चोटी के विद्वान ने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयास किया है। अशोक के बाद भी अभिलेखों की परंपरा कायम रही। अब हमें अनेक प्रशस्तियाँ मिलने लगती हैं, जिनमें दरबारी कवियों अथवा लेखकों द्वारा अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा के शब्द मिलते हैं। यद्यपि ये प्रशस्तियाँ अतिरंजित हैं, तथापि इनसे संबंधित शासकों के विषय में हमें अनेक महत्वपूर्ण बातें ज्ञात होती हैं। ऐसे लेखों में खारवेल का हाथी गुम्फा का प्रयाग, हाथी गुम्फा अभिलेख, सक्षत्र रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, सातवाहन नरेश पुलमावी का नासिक गुहा लेख, गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख, मालव नरेश यशोधर्मन का मंदसौर अभिलेख, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का एहोल का अभिलेख, प्रतिहार नरेश भोज का ग्वालियर अभिलेख आदि विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। इनमें से अधिकांश लेखों से तत्संबंधी राजाओं के सैनिक अभियानों की सूचना मिलती है, जैसे समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ लेख में उनकी विजयों का विशद विवरण है। एहोल का लेख हर्ष पुलकेशिन युद्ध का विवरण देता है। ग्वालियर लेख से गुर्जर प्रतिहार शासकों के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती हैं। गैर सरकारी लेखों में यवन राजदूत हेलियोडोरस का बेस्तनगर से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिससे द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। कुछ अभिलेख मूर्तियों, ताम्रपत्रों आदि के ऊपर अंकित मिलते हैं। इनमें भी इतिहास विषयक अनेक उपयोगी सामग्रियां प्राप्त हो जाती हैं। मध्य प्रदेश के एरण से प्राप्त वाराह प्रतिमा पर हूणराज तोरमाण का लेख अंकित है, जिससे उसके विषय में सूचनाएं मिलती हैं। पूर्व मध्यकाल में शासन करने वाले राजपूतों के विभिन्न राजवंशों से प्रत्येक के कई लेख मिलते हैं, जिनसे संबंधित राजाओं की उपलब्धियों के साथ साथ समाज एवं संस्कृति की भी जानकारी होती है। इनमें गुर्जर प्रतिहास वंशति जोधपुर तथा ग्वालियर प्रशस्ति, पाल वंश का खालिमपुर, नालंदा तथा भागलपुर के लेख, सेनवंजी विजयसेन की देवाड़ा प्रशस्ति, गढ़वाल शासक गोविंद चंद का कमौली लेख, परमार भोजदेव का वंशवर लेख तथा जय सिंह की उदयपुर प्रशस्ति, चंदेल धंग का खुजराहो लेख, चेदकर्ण का बनारस तथा यशकर्ण का जबलपुर ताम्रपत्र लेख, चामान विग्रहराज का दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख आदि प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। राजपूत शासकों के अधीन सामंतों के भी बहुसंख्यक लेख मिलते हैं। पूर्व मध्यकाल के बहुसंख्यक भूमि अनुदान पत्र मिलते हैं, जिनसे प्रशासन के सामंती स्वरूप की सूचना मिलती है। दक्षिण भारत में शासन करने वाले पल्लव, चोल आदि प्रसिद्ध राजवंशों के भी अनेक लेख प्राप्त हुए हैं, जिनसे उनके इतिहास की विस्तृत जानकारी मिलती है। मुद्राएं अथवा सिक्के। अभिलेखों के अतिरिक्त प्राचीन राजाओं द्वारा ढलवाए गए सिक्कों से भी प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध होती है। यद्यपि भारत में सिक्कों की प्राचीनता 8वीं शती ईसा पूर्व तक जाती है, तथापि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से ही हमें नियमित सिक्के मिलने लगते हैं। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इन्हीं को साहित्य में करसापण, पुराण, धरण, शतमान आदि भी कहा गया है। ये अधिकांशतः चांदी के टुकड़े हैं जिन पर विविध आकृतियां चिन्हित की गई हैं। इन पर लेख नहीं मिलते। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य यवन शासकों ने किया। उन्होंने उत्तर में सोने के सिक्के चलवाए। साधारणतया 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें मुख्य रूप से मुद्राओं की सहायता से ही ज्ञात होता है। कुछ मुद्राओं पर तिथियां भी खुदी हुई हैं जो कालक्रम के निर्धारण में बड़ी सहायक सिद्ध हुई हैं। मुद्राओं से तत्कालीन आर्थिक दशा तथा संबंधित राजाओं की साम्राज्य सीमा का भी ज्ञान हो जाता है। किसी काल में सिक्कों की बहुलता को देखकर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उसमें व्यापार वाणिज्य अत्यंत विकसित दशा में था। सिक्कों की कमी को व्यापार वाणिज्य की अवनत का सूचक माना जाता है। पूर्व मध्य काल के प्रथम चरण में सिक्कों का अभाव सा है। इसी आधार पर यह काल आर्थिक पतन का काल माना गया है। इसके विपरीत द्वितीय चरण में सिक्कों के मिल जाने से हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इस समय व्यापार वाणिज्य का पुनरुत्थान हुआ जिससे देश आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हो गया। प्राचीन भारत के गणराज्यों का अस्तित्व मुद्राओं से ही प्रमाणित होता है। मालव, यौधेय आदि गणराज्यों तथा पांचाल के मित्रवंशी शासकों के विषय में हम मुख्यतः सिक्कों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। कभी कभी मुद्रा के अध्ययन से हमें सम्राटों के धर्म तथा उनके व्यक्तित्व के गुणों का पता लग जाता है। उदाहरणार्थ हम कनिष्क तथा समुद्रगुप्त की मुद्राओं को ले सकते हैं। कनिष्क के सिक्कों से यह पता चलता है कि वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। समुद्रगुप्त अपनी कुछ मुद्राओं पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इससे उसका संगीत प्रेम प्रकट होता है। भारत के इंडो भक्ति शासकों के विषय में हमें उनके सिक्कों से ही ज्ञात होता है। इंडो यूनानी तथा इंडो सीथियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत सिक्के ही हैं। शक पहलव युग की मुद्राओं से उनकी शासन पद्धति का ज्ञान होता है। इनके लेखों से पता चलता है कि पल्लव राजा अपने गवर्नर के साथ शासन करते थे। समुद्रगुप्त कुमार गुप्त की अश्वमेध शैली की मुद्राओं से अश्वमेध यज्ञ की सूचना मिलती है तथा सातवाहन नरेश सातकर्णी की एक मुद्रा पर जलपोत का चित्र उत्कीर्ण है जिससे ऐसा अनुमान लगाया गया है कि उसने समुद्र विजय की थी। इसी प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की व्याघ्र शैली की मुद्राओं से उसकी पश्चिम भारत गुजरात काठियावाड़ के शकों की विजय सूचित होती है। जो अगला पुरातात्विक इतिहास के अंतर्गत है स्मारक हैं। इसके अंतर्गत प्राचीन इमारतें, मंदिर, मूर्तियां आदि आती हैं। इनसे विभिन्न युगों की सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक परिस्थितियों का बोध होता है। इनके अध्ययन से भारतीय कला के विकास का भी ज्ञान प्राप्त होता है। मंदिर, विहारों तथा स्तूपों से जनता की आध्यात्मिकता का, धर्मनिष्ठा का पता चलता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाइयों से 5,000 पुरानी सिंधु सभ्यता का पता चला है। खुदाई के अन्य प्रमुख स्थल तक्षशिला, मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र, नालंदा, राजगृह, सांची और भरहुत आदि हैं। प्रयाग विश्वविद्यालय के तत्वाधान में कौशाम्बी में व्यापक पैमाने पर खुदाई की गई है। यहाँ से उदयन का राजप्रसाद और घोषिताराम नामक एक विहार मिला है। अतरंजी खेड़ा आदि की खुदाइयों से पता चलता है कि देश में लोहे का प्रयोग ईसा पूर्व 1000 के लगभग प्रारंभ हो गया था। इसी प्रकार दक्षिण भारत के कई स्थानों से भी खुदाइयां की गई हैं। पांडिचेरी के समीप स्थित तरिकामेडु नामक स्थान की खुदाई से रोमन सिक्के, दीप का टुकड़ा, बर्तन आदि मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में रोम तथा दक्षिण भारत के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। पट्टकदल, चित्तलदुर्ग, तालकड, हेलविड, मास्की, ब्रह्मगिरी आदि दक्षिण भारत के कुछ अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल हैं जहाँ से खुदाइयाँ हुई हैं। विभिन्न स्थानों से प्राप्त सामग्रियों से प्राचीन इतिहास के विभिन्न पहलुओं पर सुंदर प्रकाश पड़ता है। देवगढ़ झांसी का मंदिर, भितरगांव का मंदिर, अजंता की गुफाओं के चित्र, नालंदा के बुद्ध ताम्रमूर्ति आज से हिंदू कला एवं सभ्यता के पर्याप्त विकसित होने के प्रमाण मिलते हैं। दक्षिण भारत से भी अनेक स्मारक प्राप्त होते हैं। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे अच्छा उदाहरण है। पल्लव काल के भी कई मंदिर प्राप्त होते हैं। खुजराहो तथा उड़ीसा से प्राप्त बहुसंख्यक मंदिर हिंदू वास्तु एवं स्थापत्य के उत्कृष्ट स्वरूप को प्रकट करते हैं। भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक द्वीपों से हिंदू संस्कृति से संबंधित स्मारक मिलते हैं। इनमें मुख्य रूप से जावा का बुदूर स्तूप, तथा कंबोडिया के अंकोरवाट मंदिर का उल्लेख किया जा सकता है। इसी प्रकार मलाया, बोर्नियो, बाली आदि में हिंदू संस्कृति से संबंधित अनेक स्मारक प्राप्त हुए हैं। इनमें इन द्वीपों में संस्कृत हिंदू संस्कृति के पर्याप्त रूप से विकसित होने के प्रमाण मिलते हैं। इस प्रकार भारतीय साहित्य, विदेशी यात्रियों के विवरण तथा पुरातत्व, इन तीनों के सम्मिलित साक्ष्य के आधार पर हम भारत के प्राचीन इतिहास का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति की परिभाषा। सभ्यता और संस्कृति, इन दोनों शब्दों का प्रयोग आजकल प्रायः समान अर्थ में किया जाता है। सामान्यतः सभ्यता से तात्पर्य मनुष्य की उपलब्धियों से है। मनुष्य ने देश और काल में विश्व के धरातल पर मन से जो सोचा है, कर्म से किया है तथा भौतिक माध्यम से निर्मित किया है, सभ्यता उन सभी की एक सामान्य संज्ञा है। सभ्यता शब्द संस्कृत के सभा से निष्पन्न हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सभा अथवा समाज के युग। सभ्य धनतल धनटाप, इससे तात्पर्य विनम्रता, सुशीलता अथवा कुलीनता से माना गया है। इसका संबंध सामाजिकता से है, जिसके अंतर्गत मनुष्य से कतिपय विधि निषेधों के पालन की अपेक्षा की जाती है। अंग्रेजी में इसे सिविलाइजेशन कहा जाता है। इसका संबंध नागरिक से है। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार इस शब्द का अर्थ है सामाजिक विकास की उन्नत अवस्था, एडवांस स्टेज इन सोशल डेवलपमेंट। इसी प्रकार संस्कृति शब्द सम उपसर्ग पूर्वक कृ धातु में तिग्न इस प्रत्यय लगाने से बनता है, जिसका अर्थ है वह कार्य जो भली बात किया गया हो तथा विभूषित अथवा अलंकृत भी हो। इस दृष्टि से संस्कृत किसी अवस्था के परिष्कृत या सुधरे हुए स्वरूप को द्योतित करती है। प्रत्येक सभ्यता के इतिहास में एक ऐसा स्तर आता है जबकि मनुष्य एक विशेष प्रकार का बौद्धिक उत्कर्ष कर लेता है, और यह उत्कर्ष साहित्य, दर्शन, विज्ञान, कला आदि के माध्यम से मुखरित होता है। इस स्तर को प्राप्त कर सभ्यता अलंकृत अथवा पुरस्कृत हो जाती है। सभ्यता के इस स्वरूप को ही हम विशिष्ट अर्थ में संस्कृति की संज्ञा प्रदान कर सकते हैं, अन्यथा सामान्य अर्थ में ये दोनों ही शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में ग्रहण किए जा सकते हैं। इन शब्दों से इतिहासकार किसी समाज के जीवन एवं कृतियों की समष्टि ही की विवक्षा रखता है। इस प्रकार मानव संस्कृति का संबंध ज्ञान, कर्म तथा रचना से है, किंतु इसके लिए यह भी आवश्यक है कि संस्कृति संस्कार संपन्न अथवा विभूषित हो। संस्कृति को अंग्रेजी में कल्चर कहा जाता है। इस शब्द के विभिन्न अर्थों में से एक है परिष्कार अथवा बौद्धिक विकास द्वारा उन्नति। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि जहाँ सभ्यता भौतिक प्रगति की अथवा अवस्था को सूचित करती है, वहीं संस्कृति बौद्धिक अथवा आध्यात्मिक प्रगति की सूचक है। सभ्यता दृश्य तथा संस्कृति अदृश्य है। दोनों परस्पर अविच्छिन्न रूप से संबंधित हैं। भारत की प्राचीन संस्कृति का इतिहास अत्यंत गौरवशाली है। इसने सभ्यता के अति प्राचीन काल से ही विश्व में अतीव आदरपूर्ण स्थान प्राप्त किया। ऋग्वेद में स्पष्टतः कहा गया है कि संस्कृति प्रथिमा विश्वावरा, अर्थात आदि संस्कृति विश्वरा विश्ववारा अथवा विश्व के कल्याण के लिए थी। भारतीय संस्कृति की इस उदात्त भावना का ही परिणाम था कि जहाँ प्राचीन विश्व की समकालीन संस्कृतियाँ पूर्णतया काल कवलित हो गईं, वहाँ भारतीय संस्कृति आज भी जीवंत तथा सबके लिए प्रतिमान या आदर्श स्वरूप है। ऐसी गरिमामयी संस्कृति का अध्ययन समस्त भारतीयों को गौरवान्वित करता है। भारतीय संस्कृति के अध्ययन स्रोत। भारतीय संस्कृति के अध्ययन के लिए प्रायः उन्हीं स्रोतों का उपयोग किया जाता है जो इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी हैं, क्योंकि दोनों परस्पर अविच्छिन्न रूप से संबंधित हैं। इतिहास के ही समान संस्कृति के अध्ययन के लिए साहित्य, विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण तथा पुरातत्व, तीनों साधनों का उपयोग किया जाता है। भारतीय संस्कृति का आधार है प्रागवैदिक एवं वैदिक काल। प्रागवैदिक काल के अंतर्गत पाषाण काल तथा धातु काल की संस्कृतियाँ आती हैं। इनके विषय में हमारे ज्ञान का एकमात्र साधन पुरातत्व ही है। धातुकालीन सभ्यताओं में जो है सिंधु अथवा हड़प्पा सभ्यता का अति विशिष्ट स्थान है। यह भारत की प्रथम नगर सभ्यता थी। दुर्भाग्यवश इसकी लिपि का उद्वाचन न होने से इसके अधिकांश बौद्धिक पक्षों के विषय में हमारी जानकारी अनुमानपरक ही है। विभिन्न स्थलों से प्राप्त अवशेषों के आधार पर हम इस सभ्यता के भौतिक स्वरूप का पुनर्निर्माण करते हैं। सैंधव सभ्यता के पूर्व की संस्कृति का ज्ञान हमें पाषाण एवं धातु निर्मित उपकरणों मूर्तियों मोहरों भांडों आदि की सहायता से होता है जो बहुतायत में विभिन्न पुरास्थलों से उपलब्ध होती हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य अत्यंत विशाल है जिसे सुविधा के लिए धार्मिक और लौकिक दो भागों में विभाजित किया गया है। वैदिक साहित्य तथा उसके आधार पर लिखे गए ग्रंथ ब्राह्मण साहित्य कहे गए हैं। कुछ धार्मिक साहित्य बौद्ध तथा जैन धर्म से संबंधित है। चार वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद एवं अथर्ववेद संयुक्त रूप से संहिता कहे जाते हैं। इसके बाद ब्राह्मण आरण्यक तथा उपनिषद ग्रंथ हैं। ऋग्वेद में वर्णित संस्कृति पूर्व वैदिक तथा बाद के ग्रंथों की संस्कृति उत्तर वैदिक कही जाती है। वेदांग सूत्र महाकाव्य पुराण स्मृति ग्रंथ आदि के अध्ययन से भारतीय संस्कृति के विविध पक्षों पर सुंदर प्रकाश पड़ता है। बौद्ध एवं जैन साहित्य का दृष्टिकोण भी धर्मपरक ही है। जहाँ ब्राह्मण ग्रंथों में सूचना नहीं मिलती वहाँ इन ग्रंथों में वर्णित सामग्रियाँ हमारी सहायता करती हैं। ब्राह्मण साहित्य का दृष्टिकोण ग्रामीण तथा बौद्ध एवं जैन साहित्य का दृष्टिकोण नगरीय प्रतीत होता है। इनमें नगर जीवन की अनेक मान्यताओं जैसे व्यापार वाणिज्य सुदखोरी वैश्यावृत्ति आदि का समर्थन किया गया। ये दोनों ही धर्म बदले हुए सामाजिक दृष्टिकोण तथा आर्थिक परिवेश के पूर्णतया अनुकूल थे। बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन से हम तत्कालीन सामाजिक आर्थिक दशा का व्यापक विवरण प्राप्त कर लेते हैं। विदेशी लेखकों एवं यात्रियों के विवरण भारतीय इतिहास के साथ साथ संस्कृति के विभिन्न पक्षों पर भी सुंदर प्रकाश डालते हैं। प्राचीन यूनानी हेरोडोटस के विवरण से भारत ईरान संबंधों की जानकारी होती है। पेरिप्लस से भारत के प्राचीन समुद्री व्यापार पर प्रकाश पड़ता है। राजदूत मेघसनेस प्रथम मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में उपस्थित हुआ। उसका ग्रंथ इंडिका मौर्य युगीन समाज एवं वर्धनकालीन संस्कृति के कुछ पक्षों का बोध कराते हैं। पूर्व मध्यकाल में अनेक अरबी फारसी यात्री लेखक एवं विद्वान भारत पहुँचे। इनमें सबसे प्रमुख नाम अलबरूनी का है। उसका ग्रंथ तहकीके हिंद राजपूतकालीन समाज धर्म रीति रिवाज परंपराओं आदि पर अच्छा प्रकाश डालता है। पुरातत्व के अंतर्गत अभिलेख सिक्के तथा प्राचीन स्मारकों की गणना की जाती है। अशोक के समय से प्रारंभ होकर प्राचीन इतिहास के प्रत्येक काल में लेखक बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं। यद्यपि इनका मुख्य उद्देश्य शासकों की राजनीतिक उपलब्धियां बताना है, यद्यपि इनके अध्ययन से समकालीन शासक धर्म समाज साहित्य व्यापार वाणिज्य कला आदि विविध सांस्कृतिक पक्षों का भी सुंदर ज्ञान हो जाता है। सिक्के आर्थिक इतिहास के प्रमुख स्रोत माने गए हैं। इनकी अधिकता को आर्थिक प्रगति एवं न्यूनता को अवनति का सूचक माना जाता है। सिक्कों पर अंकित कुछ धार्मिक प्रतीक एवं चिन्ह समकालीन धर्म एवं धार्मिक स्थिति की भी सूचना देते हैं। भारतीय संस्कृति के स्रोत के रूप में प्राचीन स्मारकों भवन मंदिर मूर्तियां आदि का भी काफ़ी महत्व है। सैंधव संस्कृति के नगरी स्वरूप का ज्ञान खुदाई से मिले स्मारकों से ही होता है। मंदिर मूर्तियां आदि से जहां एक ओर जनता की धार्मिकता का पता चलता है वहीं दूसरी ओर हिंदू कला के विविध पक्षों का सुंदर प्रकाश पड़ता है। दक्षिण भारत से भी अनेक स्मारक प्राप्त हुए हैं। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का उत्कृष्टतम उदाहरण है। खुजराहो तथा उड़ीसा से प्राप्त मंदिर हिंद वास्तु एवं स्थापत्य के सर्वोत्तम स्वरूप को प्रकट करते हैं। इस प्रकार साहित्य विदेशी विवरण तथा पुरातत्व इन तीनों की सहायता से हम भारतीय संस्कृति के विविध पक्षों का अच्छा अध्ययन करते हैं। इन सभी का उपयोग यथास्थान करते हुए भारत के प्राचीन संस्कृति का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। भारतीय संस्कृति की विशेषताएँ। भारतीय संस्कृति की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो विश्व के अन्य देशों की संस्कृतियों में दृष्टिगत नहीं होती। अपने विशिष्ट तत्वों के कारण ही भारतीय संस्कृति ने विश्व के देशों में अपनी महत्ता को बनाए रखा है। इन्हें हम आगे बताएंगे। जो इसकी सर्वप्रथम बात है वह प्राचीनता है। प्राचीनता, भारतीय संस्कृति का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। भारत में सभ्यता का उदय तथा विकास ईसा के कई सदियों पूर्व प्रारंभ हुआ। प्रागैतिहासिक उपकरणों से पता चला है कि विश्व के अन्य भागों के साथ ही भारत में भी मानव संस्कृति का प्रारंभ हुआ। सैंधव सभ्यता की खोज से भारतीय संस्कृति की प्राचीनता बढ़ गई है तथा आज हमारे पास यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त आधार है कि मिस्र तथा मेसोपोटामियों की सभ्यताओं के बाद भारत की भी अपनी एक स्वतंत्र सभ्यता थी जो अधिकांश अंशों में समकालीन सभ्यताओं की अपेक्षा कहीं अधिक विकसित एवं गतिशील थी। मिस्र एवं मेसोपोटामिया के समान भारत देश भी मानव सभ्यता का जनक होने का दावा कर सकता है जहां उन विचारों विश्वासों एवं क्रियाओं का सूत्रपात हुआ जिन्होंने कालांतर में विश्व इतिहास एवं सभ्यता को दिशा प्रदान किया। यूनान रोम आदि देशों में सभ्यता का प्रादुर्भाव भारत के बहुत बाद में हुआ। इस प्रकार भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में सर्वप्रमुख है। निरंतरता एवं चिरस्थायिता। भारतीय संस्कृति में प्राचीनता होने के साथ ही साथ निरंतरता एवं चिरस्थायीता भी है, जो विश्व की अन्य संस्कृतियों में दृष्टिगोचर नहीं होती। मिस्र, सुमेर, अक्काद, बेबीलोन, असीरिया तथा ईरान की संस्कृतियों का अस्तित्व बहुत पहले ही समाप्त हो चुका है। मिस्र, मेसोपोटामिया आदि के आधुनिक निवासियों का अपनी प्राचीन संस्कृतियों से कोई संबंध नहीं है, जो आज अतीत की कहानियां मात्र हैं। किंतु यह बात भारतीय संस्कृति के लिए लागू नहीं होती। भारत का अतीत उसके वर्तमान जीवन से अविच्छिन्न रूप से संबद्ध है। इस संस्कृति के मूल तत्व इतने स्थायी हैं कि समय का प्रवाह एवं प्रहार उन्हें विलुप्त नहीं कर पाया है। शताब्दियों के परिवर्तनों के बावजूद भारतीय संस्कृति की आत्मा समान रही है। इसमें अद्भुत सातत्य है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त देवी देवताओं की मूर्तियां आज भी भारतीयों के लिए पूजनीय हैं। हिमालय से कन्याकुमारी तक बसे हुए हिंदू आज भी उन वैदिक मंत्रों का उच्चारण अतीव श्रद्धा के साथ करते हैं, जिन्हें ऋषियों ने शताब्दियों पूर्व सिंधु सरिता के तट पर उच्चारित किया था। यूनान तथा रोम की सभ्यताओं के उदात्त धर्म एवं दार्शनिक सिद्धांत भी आज उनके निवासियों के लिए कोई महत्व नहीं रखते, जबकि भारतीयों के लिए उनकी प्राचीन भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन, सामाजिक आचार विचार आज भी उतने ही मूल्यवान बने हुए हैं जितने प्राचीन समय में थे। यह निरंतरता भारतीय संस्कृति की अपनी वस्तु है, जो पाश्चात्य दर्शकों के लिए आश्चर्यजनक प्रतीत होती है। भारतीय संस्कृति के सम्मुख अनेक गंभीर चुनौतियां आईं, जिनका सामना दृढ़ता के साथ करती हुई वह समय की कसौटी पर खरी उतरी है। ऐतिहासिक काल से लेकर प्राचीन युग के अंत तक देश को अनेक भीषण एवं बर्बर आक्रमणों का सामना करना पड़ा, किंतु पराभव के दिनों में भी भारतीय संस्कृति ने अपना मूल स्वरूप स्थायी बनाए रखा तथा अपने उदात्त विचारों एवं विश्वासों के क्रूर एवं बर्बर जातियों को भी सभ्य बना दिया। आध्यात्मिकता एवं धार्मिकता एक प्रकार से भारतीय संस्कृति का प्राण है, जिसने इसके सभी अंगों को प्रभावित किया है। प्राचीन भारतीयों ने ऐहिक सुखों का महत्व समझते हुए भी उन्हें अपने जीवन पद्धति में गौड़ स्थान प्रदान किया। प्राचीन समाज में पुरुषार्थों का विधान एवं आश्रम व्यवस्था का प्रतिपादन मनुष्य की आध्यात्मिक साधना के ही प्रतीक है। जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है तथा अन्य सभी पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ एवं काम इसके सहायक हैं। इनमें धर्म को प्रमुखता दी गई है, जो जीवन की सभी अवस्थाओं में व्यक्ति की क्रियाओं को प्रेरित एवं प्रभावित करता है। जो धर्म के द्वारा उन्नति करे वही विद्वान एवं गुणवान कहा गया है। धर्म के माध्यम से ही जीवन यापन करने वाला मनुष्य अंततो गत्वा मोक्ष की प्राप्ति करता है। ग्रहणशीलता। भारतीय संस्कृति की एक विशेषता उसकी ग्रहणशीलता है। उसमें प्रतिकूल परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाकर अपने में समाहित कर लेने की अद्भुत शक्ति है। ऐतिहासिक काल से लेकर मध्यकाल के पूर्व तक भारत पर अनेक जातियों के आक्रमण हुए। इनमें यमन, शक, कुषाण, हूण आदि प्रमुख हैं। भारतीय संस्कृति ने पहले तो इनके प्रबल प्रहार को शांत एवं गंभीर भाव से झेला तथा फिर क्रमशः इन विदेशियों को अपनी धारा में प्रवाहित कर लिया। उन्होंने ब्राह्मण तथा बौद्ध धर्मों को ग्रहण किया तथा भारतीय संस्कृति के प्रचारक एवं उन्नायक बन गए। शक, महा क्षत्र, रुद्र, दावन वैदिक धर्म एवं संस्कृति का पोषक था, जबकि कुषाण शासक कनिष्क न केवल बौद्ध धर्म ग्रहण किया अपितु उसके प्रचार प्रसार में अपने साम्राज्य के सभी साधनों को भी लगा दिया। हिंद यवन मिलिंद मेनांडर ने बौद्ध संघ में अरहत पद प्राप्त किया। क्रूर एवं बर्बर हूणों ने शैव धर्म ग्रहण किया। पूर्व मध्यकाल के तुर्क भी भारतीय संस्कृति के प्रभाव से नहीं बच सके। यह सब संस्कृति की ग्रहणशीलता का ही परिणाम था। दूसरा जो है समन्वयवादिता है। भारतीय संस्कृति समन्वयवादी है। प्राचीन समय से ही अनंत भेदों के बीच वैचारिक एकता एवं समानता की स्वीकृति की बात कही गई है। ऋग्वैदिक ऋषियों ने इस संबंध में अपना मंतव्य प्रकट करते हुए स्पष्टतः लिखा है, समान मंत्र, समान समिति, समान मन, समान सबकी प्रेरणा, समान सबके हृदय, समान सबके मानस, समान सबकी स्थिति आदि। भारतीय मनुष्यों ने अतिवादी विचारधाराओं का विरोध किया तथा मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है। अतिशय आसक्ति एवं विरक्ति दोनों ही त्याग हैं। भौतिक सुखों का उपयोग करते हुए भी उनसे लिप्त न होने का उपदेश दिया गया है। भारतीय व्यवस्थाकारों ने मानव जीवन में चारों पुरुषार्थों के विधान द्वारा भौतिक एवं आध्यात्मिक सुखों के बीच समन्वय स्थापित करने का सुंदर प्रयास किया है। मानवता के महान पुजारी महात्मा गौतम बुद्ध समन्वयवादी थे। गीता में ज्ञान, कर्म एवं भक्ति के बीच समन्वय स्थापित किया गया है, जो सभी के लिए अनुकरणीय है। हिंदू धर्म की यह सर्वप्रमुख धारणा रही है कि ईश्वर एक है तथा संसार के सभी धर्म सच्चे और अच्छे हैं। भारतीय समाज की वर्णाश्रम व्यवस्था के विभिन्न वर्गों एवं मानव जीवन के विभिन्न अवस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। सुप्रसिद्ध सम्राट अशोक ने पारस्परिक मेल मिलाप, प्रीत, एवं सहानुभूति एकत्व को ही विभिन्न वर्गों के लिए जीवन का श्रेष्ठ मार्ग घोषित किया है। समवाय एवं साध, समवाय अथवा समन्वय की अवधारणा ने ही भारत के दीर्घकालीन इतिहास के समस्त राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विकास को नियंत्रित करते हुए उसे एकता के सूत्र में आबद्ध होने के मार्ग पर अग्रसर किया है। समन्वय की यह प्रवृत्ति विश्व के किसी अन्य संस्कृतियों में दिखाई नहीं देती। भारतीय संस्कृति को विश्व इतिहास में समन्वय का एक महान प्रयोग कहा जा सकता है। धार्मिक सहिष्णुता, भारतीय संस्कृति धार्मिक विषयों में सहिष्णुता का उपदेश देती है। धर्मांधता एवं संकुचित मनोवृत्ति इसमें नहीं मिलती। प्राचीन भारत में धर्म के नाम पर अत्याचार एवं रक्तपात प्राय नहीं हुआ है। भारतीय मनीषा ने ईश्वर को एक सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान आदि मानते हुए विभिन्न धर्मों एवं मतों को उस ईश्वर तक पहुँचाने के भिन्न भिन्न मार्ग बताया है। ऋग्वेद में कहा गया है कि सत अर्थात ब्रह्म एक है, किंतु ज्ञानी लोग उसका विविध प्रकार से वर्णन करते हैं। एक सद विप्रा बहुधा वदंत गीता में कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सभी मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुकरण करते हैं। मम वर्मना ही वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। जैन दर्शन का स्यादवाद एवं शतभंगिनय का सिद्धांत धार्मिक सहिष्णुता का ही प्रतिपादक है। सुप्रसिद्ध भारतीय सम्राट अशोक अपने 12वें शिलालेख में धर्म सहिष्णुता की भावना को इस प्रकार व्यक्त करता है, मनुष्य को अपने धर्म का आदर तथा दूसरे के धर्म की अकारण निंदा नहीं करनी चाहिए। एक न एक कारण से अन्य धर्मों का आदर करना चाहिए। ऐसा न करने पर मनुष्य अपने संप्रदाय को क्षीण करता है तथा दूसरे के संप्रदाय का अपकार करता है। जो कोई अपने संप्रदाय के प्रति भक्ति तथा उसकी उन्नत की लालसा से दूसरे के धर्म की निंदा करता है, वह वस्तुतः अपने संप्रदाय की ही बहुत बड़ी हानि करता है। लोग एक दूसरे के धर्म को सुने, इससे भी संप्रदाय बहुश्रुत होंगे तथा संसार का कल्याण होगा। प्राचीन इतिहास के स्वर्ण युग गुप्त काल में सर्वत्र धार्मिक सहिष्णुता देखने को मिलती है। यहाँ धार्मिक कट्टरता एवं असहिष्णुता के उदाहरण अपवाद स्वरूप ही मिलते हैं। प्राचीन भारतीयों ने उन विदेशी धर्मावलंबियों को भी अपने यहाँ शरण प्रदान की जो अपने देशों में होने वाले धार्मिक संहार एवं अत्याचार से पीड़ित होकर यहाँ पहुंचे। सर्वांगीणता, भारतीय संस्कृति मानव जीवन के सभी पक्षों के सम्यक विकास पर बल देती है। मैक्स मुलर जैसे कुछ पाश्चात्य विचारकों की धारणा है कि प्राचीन भारतीयों के लिए भौतिक जीवन एक स्वप्न एवं भ्रांति के समान था, किंतु इस प्रकार का विचार तर्कसंगत नहीं लगता। वास्तविकता तो यह है कि प्राचीन भारतीयों ने भौतिक सुखों के महत्व को भी समझा तथा उनकी उपेक्षा नहीं की। यह सही है कि भारतीय जीवन के सभी पक्ष धर्म से अनुप्राणित थे, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि धर्म का संबंध मात्र पारलौकिक सुखों से ही था। वैशेषिक दर्शन में धर्म उसे कहा गया है जिससे लौकिक तथा पारलौकिक दोनों सुखों की प्राप्ति हो। यत्वाभ्युदय निशेष सिद्धि सहधर्म, मानव जीवन में आश्रम व्यवस्था एवं पुरुषार्थों का विधान मनुष्य तथा समाज के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर ही किया गया था। सार्वभौमिकता, भारतीय संस्कृति में सार्वभौमिकता मिलती है। इसमें अपनी उन्नति के साथ ही साथ समस्त विश्व के कल्याण की कामना की गई है। वैदिक काल से ही भारतीय मनुष्यों ने संपूर्ण विश्व को एक मानकर विश्व बंधुत्व एवं वसुधैव कुटुंबकम जैसे उदात्त सिद्धांतों का प्रथम उद्घोष करते हुए सार्वभौमिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने न केवल मानव जाति अपितु प्राणी मात्र के कल्याण की चिंता व्यक्त किया है। ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि वह विश्व को अंधकार से प्रकाश, असत से सत्य तथा नश्वरता से अमरता की ओर अग्रसर करे। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अस्थो मा सद्गमय, मृत्युर मा अमृतम गमय। लोक कल्याण की भावना व्यक्त करते हुए कहा गया है, सभी सुखी हों, विघ्न रहित हों, कल्याण का दर्शन करें तथा किसी को कोई दुख प्राप्त न हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सार्वभौमिकता की यह भावना भारतीय साहित्य के एवं दर्शन में स्थान स्थान पर मुखरित हुई है। यह भारतीय संस्कृति की अपनी थाती है जो विश्व की अन्य संस्कृतियों में दुष्प्राप्य है। भिन्नता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत एक विशाल देश है जहां प्राकृतिक एवं सामाजिक स्तर की अनेक विषमताएं दृष्टिगोचर होती हैं। एक ओर उत्तुंग शिखर है तो दूसरी ओर नीचे मैदान है। एक ओर अत्यंत उर्वर प्रदेश तो दूसरी ओर विशाल रेगिस्तान है। यहाँ सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है तथा प्राणियों एवं वनस्पतियों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। कुछ भागों में घनघोर वर्षा होती है तो कुछ भाग नाम मात्र की वर्षा प्राप्त करते हैं। भारत में विश्व के प्रायः सभी प्रमुख धर्मों के लोग निवास करते हैं। यहाँ के लोगों की भाषाएं भी भिन्न भिन्न हैं। ये समस्त विषमताएं किसी भी बाहरी पर्यवेक्षक को खटक सकती हैं तथा उसे यह संदेह हो सकता है कि भारत एक देश न होकर छोटे छोटे खंडों का विशाल समूह है, जहाँ प्रत्येक की अपनी अपनी अलग संस्कृति है, किंतु इन प्राकृतिक एवं सामाजिक स्तर की विभिन्नताओं के मध्य एकता की एक अविच्छिन्न कड़ी है जिसकी हम अपेक्षा नहीं कर सकते। हर्बर्ट रिजले ने उचित ही लिखा है, भारत में अनेक प्राकृतिक एवं सामाजिक विविधताओं, भाषा प्रथाओं तथा धार्मिक विभिन्नताओं के बीच हिमालय से कन्याकुमारी तक एक निश्चित आधारभूत समरूपता अब भी देखी जा सकती है। वस्तुतः यहाँ एक समान भारतीय चरित्र एवं व्यक्तित्व है जिसे हम घटकों में विभाजित नहीं कर सकते। भारतीय संस्कृति की यह आधारभूत एकता हमें निम्नलिखित स्वरूपों में देखने को मिलती है। भौगोलिक एकता, प्रकृति ने भारत को एक विशिष्ट भौगोलिक इकाई प्रदान की है। उत्तर हिमालय पर्वत एक ऊंची दीवार के समान इसकी रक्षा करता है। इसके पूर्व पश्चिम और दक्षिण में विशाल सागर है। देश की इन प्राकृतिक सीमाओं ने यहाँ के निवासियों के मस्तिष्क में समान मातृभूमि के निवासी होने का भाव जागृत किया तथा उन्होंने इस समस्त भूमिखंड को भारतवर्ष की संज्ञा से विभूषित किया। इस विशाल भूखंड में समान संस्कृति विकसित हो सकी। जिस जाति के पास अपनी सुनिश्चित भूमि नहीं होती, उसकी कोई भी सभ्यता विकसित नहीं हो पाती। बर्बर एवं खानाबदेश जातियाँ कभी भी संस्कृति का विकास नहीं कर पाती हैं। हिब्रुओं की संस्कृति के विकास में सबसे बड़ी बाधा यही रही कि उनकी कोई सुनिश्चित भूमि नहीं थी। भूमि का देश के लिए वही महत्व है जो मनुष्य के लिए उसके शरीर का होता है। राष्ट्र निर्माण के तत्वों में भूमि सर्वप्रधान एवं महत्वपूर्ण है। अतः भारतीय संस्कृति के विकास के लिए सर्वप्रथमतः समान भूमि का विशाल भूखंड को अपनी मातृभूमि माना है। भारत के निवासियों ने प्रारंभ से ही उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तट तक के विशाल भूखंड को अपनी मातृभूमि माना है। प्राचीन साहित्य में स्थान स्थान पर इस एकता के दर्शन होते हैं। विष्णु पुराण में स्पष्टता वर्णित है, समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में जो भूखंड है वह भारतवर्ष है तथा वहाँ की संतानें भारतीय हैं। उत्तरम यस्य समुद्रस्य हिमाद्रस्य दक्षिणम वस् तद् भारतम नाम भारतीय यत्र संतति। भूमि की यह एकता भारतीय संस्कृति के लिए सबसे बड़ा वरदान सिद्ध हुई है। इसी ने भारतीय संस्कृति को बचाए रखा है, अन्यथा घटनाओं के तूफान में सब कुछ नष्ट हो गया होता। यही देश की मौलिक एकता का सबल आधार है। अथर्ववेद से पृथ्वी सूक्त ने भूमि माता है तथा मैं पुत्र हूँ, मातृभूमि पुत्रो हम पृथ्व्या कहकर देश प्रेम के भारतीय दृष्टिकोण को स्पष्टता व्यक्त किया गया है। भूमि की तुलना एक ऐसी धेनु गाय से की गई है जो अपने विभिन्न संतानों को भाषा धर्म एवं विश्वास में विभिन्नता के होते हुए भी संभाव से दुग्धपान कराती है। जन्म विभ्रति बहुधा विवास्यम नाना धर्माणम पृथ्वी यथोकसम सहस्त्रधाराम दृश्य वे दुहा ध्रुव धेनुरपन फुस्फलंती। राजनैतिक एकता, भारत भूमि की एकता की इस अवधारणा ने राजनैतिक एकता को प्रोत्साहन प्रदान किया। यहाँ के महान सम्राटों ने इसे चरितार्थ करने का सफल प्रयास किया। प्राचीन ग्रंथों में सम्राटों के लिए एकराट, राजाधिराज, सार्वभौम जैसे विरुदों का प्रयोग मिलता है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में हिमालय से लेकर समुद्र तट तक विस्तृत सहस्त्रों भूमि को चक्रवर्ती सम्राट का क्षेत्र बताया है। तस्याम हिमवत समुद्रांतरम उदचिनीचम योजनम सहस्त्र परिमाणम अतिरियक चक्रवर्ती क्षेत्रम। राजसूय, वाजपेय, अश्वमेघ जैसे वैदिक यज्ञों के अनुष्ठान का विधान चक्रवर्ती सम्राटों के लिए किया गया है। प्राचीन इतिहास के प्रतिनिधि महान सम्राटों जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य आदि के मस्तिष्क में एकता का यही आदर्श रहा तथा उन्होंने अपनी विजयों द्वारा इसे यथार्थ रूप में प्राप्त भी किया। प्राचीन साहित्य में राजशासन विषयक सभी मान्यताएं इस बात की पुष्टि करती हैं कि हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक का विशाल भूखंड एकता है। सांस्कृतिक एकता, भौगोलिक तथा राजनीतिक एकता के साथ ही साथ हमें भारतीय उपमहाद्वीप में धर्म, भाषा एवं साहित्य तथा सामाजिक परंपराओं की एकता भी दिखाई देती है। प्राचीन साहित्य में भारत को सात नदियों, गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु तथा कावेरी एवं सात पवित्र नगरियों अयोध्या, मथुरा, माया, कांची, काशी, कांची, अवंतिका तथा द्वारावती की भूमि मानकर प्रार्थना करने का उपदेश दिया गया है। स्नान के समय श्लोक पढ़कर सात नदियों का आवाहन किया जाता था, जैसे गंगा च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंध कावेरी जलेश्विन सन्निधि करु अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती च सप्तत्या मोक्षदायिका। इनके अंतर्गत प्रायः समस्त भारतीय भूखंड आ जाता है। हिंदू धर्म में तीर्थ यात्रा के द्वारा भी पुण्यार्जन का विधान है। महाभारत के वन पर्व में वर्णन मिलता है कि तीर्थों में जाने का पुण्य यज्ञों से भी अधिक है। जो पुण्य बहुत दक्षिणा वाले अनेक अग्निष्टोम आदि यज्ञों को करने से भी नहीं मिलता है, वह तीर्थ में जाने से प्राप्त होता है। इस अवधारणा ने भी भारतीय एकता को सुदृढ़ किया। प्रत्येक धर्म में तीर्थ स्थलों की जो सूची मिलती है वे किसी क्षेत्र में विशेष में सीमित न होकर संपूर्ण देश में फैले हुए थे। उत्तर के निवासियों के लिए सुदृढ़ दक्षिण के तीर्थ उतने ही सद्देय थे जितने कि दक्षिण के निवासी उत्तरी तीर्थों को मानते थे। पुराणों के अनुसार चार तीर्थ माने गए हैं, पूर्व में श्वेत गंगा, पश्चिम में गोमती कुंड द्वारका स्थित गोमती नदी, उत्तर में तप्त कुंड बदरी तथा बद्रीनाथ स्थित तथा दक्षिण में धनुष तीर्थ। इसी प्रकार चाल विशाल सरोवर, पंपासर, बिंदुसर, नारायणसर तथा मानसरोवर देश की चारों दिशाओं में स्थित थे। भारत के विभिन्न भागों में एकता स्थापित करने के उद्देश्य से ही महान दार्शनिक शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में चार मठों की स्थापना की थी। ये उत्तर में बद्री केदारनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी जो मैसूर में है, पूर्व में पुरी उड़ीसा तथा पश्चिम में द्वारका में स्थित थे। ये मठ समस्त देश की हिंदू जनता के लिए समान रूप से पवित्र एवं पूजनीय रहे। हिंदू इन तीर्थयात्रियों की यात्रा कर आज भी अपने धन्य को धन्य मानते हैं। मनुस्मृति तथा भागवत पुराण में भारत को देव निर्मित देश कहा गया है। महाकवि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है। देश के सभी जनों ने इस देवतत्व को स्वीकार किया। विश्व पुराण में भारत भूमि की प्रशंसा करते हुए कहा गया है, धन्य हैं वे लोग जो भारत भूमि में उत्पन्न हुए हैं। यहाँ की भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, क्योंकि यहाँ स्वर्ग के साथ साथ अपवर्ग मोक्ष की भी साधना होती है। देवता भी स्वर्ग का सुख भोग लेने के बाद मोक्ष की साधना के लिए भारत में पुनः जन्म लेते हैं। भारतीय परंपरा में जननी तथा जन्मभूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर बताया गया है। जननी जन्मभूमि से स्वर्गदापि गरीयसी। राजशेखर की काव्य मीमांसा में गुरुकुल से लौटने के पश्चात संपूर्ण भारत भूमि का पर्यटन छात्र के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए परम आवश्यक बताया गया है। ऐसे उल्लेख निश्चयतः भारतीयों के मन में जन्मभूमि के प्रति महती श्रद्धा को सुदृढ़ करते हैं। धर्म के क्षेत्र में हम पाते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लक्ष्मी, सरस्वती आदि देवताओं एवं देवियों की पूजा समूचे देश में की जाती थी। संत महात्माओं, धर्म उपदेशकों आदि के द्वारा इस धार्मिक एकता की पुष्टि हुई। शंकर, रामानुज आदि का पूरे देश में सम्मान था। दार्शनिक विचारों में भी समरूपता मिलती है। ज्ञान, भक्ति, उपासना, कर्म संबंधी विचार पूरे देश के दर्शन में मिलते हैं। यह सही है कि भारत में भाषाओं की विविधता है, किंतु भारतीय भाषाओं की लिपियों का उद्गम ब्राह्मी लिपि से हुआ है। सभी भाषाएं संस्कृत से उद्भूत अथवा प्रभावित हैं। इसमें लिखित साहित्य प्राचीन भारतीय का ज्ञान का भंडार है। संस्कृत भाषा वस्तुतः भारतीय संस्कृति की वाहिका है। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि का पठन पाठन संपूर्ण देश में होता रहा है। लौकिक साहित्य भी एकता के साधन रहे हैं। कालिदास का काव्य समेत समस्त देश का गौरव है। पंचतंत्र की कथाएं, नीतिग्रंथ, सुवासित साहित्य का पूरे देश में प्रचार प्रसार था। पाणिनि, पतंजलि आदि के ग्रंथ कश्मीर से कन्याकुमारी तक शिक्षा के समान माध्यम थे। प्राचीन भारत के विश्वविद्यालयों में देश के प्रत्येक कोने से विद्यार्थी एकत्र होकर इस तथ्य की पुष्टि करते थे कि विविधताओं के होते हुए भी भारत देश एक है। देश की मौलिक एकता को प्रोत्साहन देने में कला का भी योगदान रहा है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, बुद्ध की समान कलाकारों द्वारा ये निर्मित हुए हैं। और ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, बुद्ध आदि तीर्थंकर की प्रतिमाएं संपूर्ण देश में प्राय एक ही लक्षण तथा मुद्रा में प्राप्त होनी है। इन्हें देखने से ऐसा लगता है कि ये समान कलाकारों द्वारा निर्मित हुए हैं। कला के कुछ बांगलिक प्रतीकों या स्वास्तिक, धर्म चक्र, कमल, पूर्ण घट आदि को संपूर्ण देश में मान्यता प्रदान की गई थी। पाषाण एवं गुहा स्थापत्य में भी क्षत्रिय विशेषताओं के साथ साथ समान भारतीय तत्व परिलक्षित होते थे। भारतीय सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में भारी विषमताओं के बावजूद हमें एक प्रकार की एकता के दर्शन होते हैं। वर्णाश्रम, धर्म, संस्कार, पुरुषार्थ आदि सभी समाजों के लिए आदर्श स्वरूप रहे हैं, जिन्हें स्थापित एवं प्राप्त करने के लिए निमित्त न्यूनाधिक रूप में सर्वत्र प्रयास हुए हैं। वर्णाश्रम धर्म तो हिंदू संस्कृति का आधार स्तंभ है। भौतिक सुख एवं वैभव के प्रति भारतीयों का दृष्टिकोण प्रायः समान रहा है। धर्म के अनुसार धन का उपार्जन, उसे अपना कुटुंब का पोषण, योग्य पात्रों को दानाद एवं धार्मिक कार्यों में उसका व्यय ही धन के प्रति भारतीयों का दृष्टिकोण रहा है। आर्थिक संगठन एवं संस्थाएं भी प्रायः संपूर्ण देश में समान थी। एक भाग के व्यापारी एवं व्यवसायी दूसरे भाग में जाते तथा धंधा करते थे। इन सबका राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने में योगदान रहा। व्यापारियों के पारस्परिक लेन देन में राज्यों की सीमाएं बाधक नहीं होती थी। राज्य एवं राजाओं के परिवर्तन होते रहने पर भी आर्थिक ढांचा प्रायः एक समान बना रहा। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कि भारतीय संस्कृति में बाह्य एवं दृश्यमान विषमताओं के मध्य एक सार्वभूत मौलिक एकता है जिसकी कोई भी उपेक्षा नहीं कर सकता। यह विभिन्नता में एकता ही भारतीय संस्कृति की सर्वप्रमुख विशेषता है।